हरे कृष्णा। तो अभी हम जो अभी कर रहे हैं, इस विधि का नाम पता है आपको? इसको क्या कहते हैं? संकीर्तन। और भगवान का नाम दो प्रकार से लिया जाता है, एक होता है माला पे, उसको क्या कहते हैं? जप। और जब सामूहिक रूप में किया जाता है उसको कहा जाता है संकीर्तन। संकीर्तन का अर्थ है सब मिलके कीर्तन करें, ठीक है? तो कीर्तन की विधि ये होती है कि एक बार मैं बोलूँगा, आप सुनेगा, फिर जब आप सबको दोहराना है, ठीक है? अभी हम यहाँ संडे प्रोग्राम में हैं, एक घंटे के लिए आए हैं, ठीक है? आप भी बहुत व्यस्त लोग हैं, हम भी व्यस्त हैं, परंतु एक घंटे के लिए मिले हैं, तो आइए हम इस एक घंटे का सबसे ज़्यादा लाभ उठाएँ, ठीक है? तो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट पर रख दीजिए, और जो अगर आपका मन इधर उधर है उन सबको आप फोकस करके इस रूम में ले आइए, ठीक है? आप सब सीधे बैठिए, एक गहरा श्वास भरिए और गहरा श्वास छोड़िए, ठीक है? और कीर्तन में पूरे मन से उत्साह से भाग लीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम प्रेमांजन दास है, मैंने NSIT से BTEC किया था। 2009 में मैंने फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन किया, और भगवान और भक्तों के आशीर्वाद से तब से अभी तक मंदिर में आप सबकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल, ठीक है? ये जो फ्रेज है आपको कहीं जाना पहचाना लग रहा है? कहाँ पर? हाँ, बाहर एक बहुत बड़ा बैनर भी लगा हुआ है, व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल, ठीक है? तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये रहेगा। तो आइए पहले इन्वोकेशन प्रेयर्स करते हैं, देन वी विल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चुनाव किया कि रविवार जो छुट्टी का दिन है, आप सब कहीं भी घूमने जा सकते थे, और ख़ासकर आज हमने सुना इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, आप घर बैठ के वो भी देख सकते थे, कहीं सिनेमा हॉल भी जा सकते थे, रेस्टोरेंट भी जा सकते थे, परंतु आप सब ने चुना कि आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि जीवन के लक्ष्य के प्रति और आध्यात्मिक आपकी रुचि है, और हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप यहाँ पर आज आए। तो जैसा कि ये टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल, खासकर आज के समय में अगर आप किसी से बोलें कि हमें जैसे रोहिणी में मंदिर निर्माण करना है, है ना, तो पहला प्रश्न ये आता है कि इतने सारे मंदिर निर्माण करने की क्या आवश्यकता क्या है, और उससे भी नीचे जाएं मंदिर की क्या आवश्यकता है। मंदिर बनाने में जितना खर्चा आता है उतने से तो आप किसी गरीब को खाना भी खिला सकते हो, है ना? तो जो पैसा आप इतने भव्य मंदिर बना रहे हैं, और वही सेम पैसा जो मंदिर के बाहर इतने सारे गरीब लोग हैं, आप यहाँ इस रोड से आएँ देखते हैं, कई जगह स्लम्स एरिया हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, इतनी गर्मी है, तो उनके पास अगर ठीक से खाने के लिए नहीं है, ठीक से रहने के नहीं है, तो वो सारा पैसा उस जगह जाना चाहिए, है कि नहीं? सही बात लगती है, नहीं लगती? तो मंदिर में आप इतना धन क्यों खर्च करते हैं, पहला प्रश्न। और कभी कभार ये भी बोला जाता है कि मंदिर का उद्देश्य क्या होता है, कि वहाँ पर आओ, थोड़ी देर भगवान के सामने मत्था टेको, बैठो और चले जाओ। तो ये तो कहीं भी किया जा सकता है, और फिर भगवान तो हर जगह उपस्थित है, मन चंगा होना चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर मन आपका साफ है, भगवान तो मन के अंदर स्थित हैं, भगवान हर जगह उपस्थित हैं, कण कण में उपस्थित हैं। तो ऐसा भगवान, अब मंदिर जाके भगवान को देखने की क्या आवश्यकता है? अगर भगवान हर जगह उपस्थित हैं तो घर बैठे भी भगवान का पाठ पूजा हो सकता है, तो मंदिर की क्या आवश्यकता है? तो क्या लगता है आपको, अगर आप में से किसी ने बाहर बैनर पड़ा है बहुत बड़ा लगा, व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल, और ये टेम्पल एक इसको शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज़ किया गया है, टेम्पल में टी से कुछ मतलब है, ई से कुछ, एम से पी से ए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? परंतु इससे पहले मैं कुछ इस टॉपिक पर कुछ बोलूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसे आज यहाँ रविवार के दिन मंदिर में आए, अगर आपका दोस्त आपको कॉल करता है कि तू इस समय कहाँ पर है, और आप कहें कि मैं यहाँ मंदिर में बैठा हूँ, और वो कहें अरे भाई ये तो 21वीं सदी है, 2017 चल रहा है, तो तुम मंदिर जाते हो क्या? ये कोई मंदिर जाने की उम्र है? मंदिर तो बाद में आराम से जब सब रिटायरमेंट होके तब जाने की जगह है, अभी तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? इतनी तुम तो बहुत बोरिंग व्यक्ति हो, नहीं? तो आप क्या जवाब देंगे अगर मैं ये सारे एलिगेशंस अगर मैं आप पे लगाऊं कि आप सब यहाँ अपना कीमती समय चुन के आप मंदिर में आए हैं? आप तो कहीं और भी जा सकते थे, आप मंदिर आपने आना क्यों चुना? या मंदिर की क्या आवश्यकता है आज के समय में? आज गवर्नमेंट की दृष्टि में भी अगर आप कहीं पे टॉयलेट खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी CSR के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको फंड मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी अगर आपने किसी जगह पर टॉयलेट्स का निर्माण करना है। परंतु अगर किसी जगह आपने मंदिर का निर्माण करना है, नहीं, उसके लिए तो धर्म, ये क्योंकि ये धर्म का विषय आ जाता है ना, एंड वी आर सेकुलर, तो क्या कहना है आपको? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? आप में से कोई प्लीज प्रयास कीजिए। एक मिनट, माइक है हमारे पास, वायरलेस माइक, वो तो आप नहीं, आजकल तो इंटरनेट है, आप घर बैठे भी सुन सकते हैं। ठीक है, और ठीक है और सही। ठीक है, हमने स्वीकार किया आपको, बहुत अच्छे। और कोई बताना चाहेगा? पीछे से लास्ट से जो चेयर्स पर बैठे हैं, इस एक्सट्रीम लेफ्ट से और यहाँ से राइट से, टेंपल की आवश्यकता क्या है? क्या टेंपल निर्माण करना, पैसा बर्बाद करना नहीं है? जितना पैसा आप मंदिर, कोई भी आप मंदिर निर्माण करते हैं, सबसे पहले उसकी जमीन खरीदेंगे, जमीन ही करोड़ों रुपए की होगी, उसके बाद मंदिर निर्माण करना, और मंदिर निर्माण करने के बाद मंदिर मेंटेन करना, और इतने सारे फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करना, जितना पैसा यहाँ पर जा रहा है उतना पैसा अगर हम कहीं और लगा दें तो ज़्यादा लाभकारी नहीं है, क्या लगता है आपको? कैसे? ओके, विल टेक वन प्रभु जी, देन वन माता जी। आर लेडीज में से हैं? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? यस माता जी, हॉस्पिटल एज वेल एज, ओके। माता जी ने कहा कि एक स्कूल की तरह है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, और हॉस्पिटल की तरह भी है जहाँ पर मानसिकता पे अपना चल रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेड। और यस प्रभु, ठीक है, यस वुड लाइक सर, यस प्रभु, ठीक है। जैसे कहीं पे आपने एजुकेशन लेनी हो, बहुत सिस्टमैटिक एक प्रोसीजर होता है उसको लेने का, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये भी एक फॉर्मल एजुकेशन है, सिस्टमैटिक वे है, तो टेंपल के थ्रू से वो मिल सकता है। ठीक है, आप सबके उत्तर आइए, हम देखते हैं। जैसे ये रोहिणी टेंपल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, ये आपको पता कौन सा टेंपल है? टेंपल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। इसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी, पूरा प्लानिटोरियम इसमें शोकेस किया जाएगा। ये पूरे विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। तो टेम्पल इसका एक फुल फॉर्म देखते हैं, टी स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी, यानी हिंदी में शांति, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपको शांति प्राप्त हो सकती है। ई एजुकेशन, जैसे माता जी ने बताया, शिक्षा। एम मेडिकेशन, जहाँ पे इलाज भी होता है। किस प्रकार का इलाज, अभी हम चर्चा करेंगे। पी से क्या होगा, अगर किसी ने, किसी को बैनर याद है, हाँ, पावर नहीं, बाहर अगर आपने देखा है बैनर, कितनों ने देखा है, बड़ा सा लगा, व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल। बस अब टेम्पल एंट्री में आपने बड़ा सा बैनर लगा नहीं देखा किसी ने। पी से पीछे आ गया, यस, माता जी ने सही उत्तर दिया, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। एल से
लव,
बिल्कुल सही। और ई से किन्होंने बोला, एजुकेशन तो हो गया, एनलाइटनमेंट नहीं, ठीक है वो भी हो सकता है, बट बाहर का ना, पीछे, हाँ, एंगेजमेंट, कार्य में रत रहना, सेवा करना, ठीक है। आइए इसमें हम पहली चीज देखते हैं, वो है ट्रैंक्विलिटी। फॉन्ट थोड़ा लाइट हो गया, ट्रैंक्विलिटी लिखा हुआ है, शांति है ना। अभी आप लोग शांति प्राप्त करने के लिए कहां कहां जाते हैं, शांति ढूंढने के लिए ही। जैसे कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में बहुत कार्य करता है एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, कुछ का मन शांत हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसके लिए कई बार मूवी थिएटर्स में जाता है, कभी कभार बड़े बड़े स्टेडियम्स का निर्माण किया जाता है जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। तो ऐसे इतनी सारी जगह अलग अलग, कुछ लोग बार्स में भी जाते हैं, पब्स में जाते हैं, कुछ लोग पार्कों में टहलने जाते हैं, सिर्फ इसके लिए कि हम, हमें उस शांति प्राप्त हो। परंतु मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि शांति, मन शांत करने के लिए मन को कम से कम सतोगुण में आना आवश्यक है। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, मोड ऑफ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक मन रजोगुण और तमोगुण में रहेगा, बहुत ही चंचल रहता है, बहुत ही चंचल रहता है या बहुत ही अज्ञानता में रहता है। परंतु जब सतोगुण में आता है, तब मन थोड़ा पीसफुल होता है। और यहाँ पर मंदिर तो बताया जाता है इन तीनों गुणों के परे है, तो इसलिए जब आप मंदिर में आते हैं, ऐसे आप में से, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसे कई भक्त लोग कहते हैं कि जैसे ही वो मंदिर के अंदर, इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, टेंपल हॉल के अंदर आते हैं, ये जो टेंपल हॉल है बाहर से बिल्कुल अलग लगता है, मीन्स इसकी वाइब्रेशंस बिल्कुल अलग लगती हैं। यहाँ प्रवेश करते ही, हालांकि बड़े जोर शोर से कीर्तन हो रहा होता है, फिर भी मन बहुत शांत, एक सुकून या शांति मिलती है। आप में से किसी का है अनुभव? क्योंकि जैसे अगर आप मछली को जल से बाहर निकाल के रखें, तो आप उसको कोई भी सुविधा प्रदान कर दें, परंतु मंदिर जो मछली है संतुष्ट नहीं होगी। परंतु जैसे ही आप मछली को जल के अंदर डाल दें, तो वो उसका वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल स्थान है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण एक जीवात्मा के लिए, ये उसका वास्तविक स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता की सबसे पहली शिक्षा आपको पता है क्या है? ये हमारा आगे नेक्स्ट ई एजुकेशन में भी कवर होगा। फर्स्ट, पहली ही इंस्ट्रक्शन भगवद गीता की ये बताता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। सिर्फ ये दिखने में बहुत सरल सा प्रश्न लगता है ना, परंतु अगर आप बाहर की दृष्टि में, एक व्यक्ति एजुकेटेड कब है, जब उसकी या तो ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, या ट्वेल्थ पूरी हो जाए, या मास्टर्स, डॉक्टरेट, इसको कोई डिग्री मिल जाए तो वो एजुकेटेड है, एक जनरल सोसाइटी के पैरामीटर्स असेसमेंट से। बट आध्यात्मिक या जो वैदिक प्रणाली है, उसमें एजुकेशन का मतलब बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ भौतिक अचीवमेंट से एजुकेशन को कंप्लीट नहीं मानते। एजुकेशन मतलब अगर एक व्यक्ति ने अगर मान लो ग्रेजुएशन पूरी की है तो कितने साल उसने पढ़ाई में लगाए, कम से कम 12 + 3 लेट से 15 और नर्सरी और वो मिला दें 16-17 साल, ठीक है। आप में से कितने ने ग्रेजुएशन पूरी की है? अगर किसी से पूछा जाए जो व्यक्ति ग्रेजुएशन है या किसी ने मास्टर्स भी की है, सिंपल एक ये क्वेश्चन, आपने 17-18 साल पढ़ाई की है, क्या आप इस बात का उत्तर दे सकते हो कि आप कौन हो? क्या ये रुचिकर प्रश्न नहीं है? क्या ये जानने लायक प्रश्न नहीं है? ये सबसे पूरा हमारे जो जीवन है उसका आधार ये है कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूं, मैं किस, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या रोल है इस पूरी सृष्टि के अंदर, मैं कैसे जान सकता हूं? तो श्रीमद् भगवद गीता, जो चीज हम मटेरियल सेंस में पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं जान सकते, भगवद गीता की शुरुआत होती है वहां से, जब भगवान अर्जुन भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान कृष्ण शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं और फिर बताते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूयति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देह किसको कहते हैं? शरीर को। देहिनो, देही कौन हुआ? शरीर के अंदर रहने वाला जीव। क्या आपको पता है कि जो अगर मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, ये मैं वास्तविकता में भगवद गीता के अनुसार, और इसको आप बहुत ही सरलता से साक्षात्कार अनुभव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा विचार करने वाली बात है, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से ऊपर होता है मन, मन से ऊपर होता है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होता है झूठा अहंकार, और उसके ऊपर होता है जीवात्मा। आई एम स्पिरिट सोल, मैं एक जीवात्मा हूं। तो जो जीवात्मा है उसका जो वो आध्यात्मिक है, इस मृत्यु के बाद इस शरीर का अंत होता है, परंतु जो जीवात्मा है वो एक, उसको एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। तो जो जीवात्मा है वो स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल बीइंग के लिए वास्तविक प्लेस क्या होगी? स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक वातावरण। और आध्यात्मिक वातावरण कहां से मिलता है? भगवान, जहां पर भी भगवान के नाम का गुणगान हो, भगवान की हरि कथा हो, भगवान की आराधना हो, उसके लिए वो मंदिर है। तो अगर आपको एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर आपको आध्यात्मिक वातावरण मिलता है, जहां पे आपको शांति प्राप्त होती है, तो वो है ट्रैंक्विलिटी, दैट इज टेम्पल। तभी जो ये दिव्य ये जो मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, 24 घंटे इस मंत्र को अगर आप जप कर ले फिर भी आप थकेंगे नहीं। आप नॉर्मल एक मटेरियल सॉन्ग को कितनी देर तक सुन सकते हैं? थोड़े दिनों बाद उससे बोर हो जाते हैं। परंतु जो भगवान का नाम है वो दिव्य है, इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए आप उनको जितना भी सुने आप उससे बोर नहीं होंगे। तो ये है पहला स्थान, ट्रैंक्विलिटी, कि यहां पर आके आप वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शांति जो आप पूरे विश्व में कहीं भी आप घूम ले, जहां पर भी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर नहीं है, जीवात्मा वहां सेटिस्फाई नहीं हो सकता। देन ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, यहां पर शिक्षा दी जाती है। किस चीज की? आपको तो एजुकेशन कंप्लीट कब मानी जाती है? जब उसमें तीन चीजें हों, उसमें ज्ञान भी हो, उसमें प्रैक्टिकल उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना वो भी हो, नॉलेज यानी स्किल्स, और साथ में ही वैल्यूज, साथ में वैल्यूज भी दी जाए। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित का जो एजुकेशन का मापदंड है वो थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं कौन सा व्यक्ति शिक्षित है, उसके जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा उसके अंदर ये तीन गुण होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है कि वो किसी भी पराई स्त्री को अपनी पत्नी के अलावा अपनी मदर्स के रूप में देखें, अपनी माता के रूप में समान में देखें, दैट्स द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। उसका चरित्र इस प्रकार का होना चाहिए। दूसरा, वो अन्य किसी भी जो वेल्थ है, धन है, उसको किस समान देखता है? कूड़े के समान देखता है, और थर्ड वो अन्य लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करता है, जैसे वो अपने साथ व्यवहार करता है, जैसे वो अपने को ट्रीट करता है, वो अन्य लोगों को इसी समान ट्रीट करता है, वो अपना समझ के, अपने फैमिली और अपनी सोसाइटी को ही नहीं, एक एक कोई भी, चाहे वो मनुष्य देह में है चाहे वो पशु योनि में है। तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको क्या लगता है, अगर आज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ग्रेजुएट करता है, और ग्रेजुएशन के बाद आप इन तीन पैरामीटर्स पे उसे चेक करें, पहला वो किसी भी वुमेन, और वुमेन के लिए ऑपोजिट, वो किसी भी अन्य पुरुष को आप फादर के रूप में देखते हैं, एक्सेप्ट वंस हस्बैंड, तो क्या ये उनमें क्वालिटी है, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या था, अन्य किसी की प्रॉपर्टी को उसको उसकी तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देखता, इट डज नॉट टच एनीवन एल्सेस प्रॉपर्टी, और थर्ड किस प्रकार से व्यवहार करते हैं अन्य लोगों से, आप जिस प्रकार से खुद से व्यवहार करते हैं, और ऐसा नहीं मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी। इसका मतलब क्या है, हर शिक्षित व्यक्ति कम से कम वेजिटेरियन तो होगा ही होगा, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है या मांसाहार करता है, अन्य जीव जंतु की हत्या करता है सिर्फ अपने जीवा के स्वाद के लिए, तो वो उनके साथ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो व्यवहार नहीं कर रहा, तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वो शिक्षित नहीं है। तो कितने ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं जो कम से कम वेजिटेरियन हो, सो दैट इज एजुकेशन। और एजुकेशन ऐसे हमने बताया, भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम, ये शिक्षा कैसी है, राज विद्या सभी विद्याओं का राजा है। कभी कभी लोगों को लगता है कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो कहाँ पे कैसे प्राप्त की जाती है, वो तो घर में नानी माँ दादी माँ से थोड़ी बहुत कहानियाँ सुन ली तो हम आध्यात्मिक हैं, हमारी आध्यात्मिक शिक्षा पूरी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप सोच लीजिए एक सामान्य मटेरियल एजुकेशन के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक शिक्षा तो वो तो मैटर से डील कर रही है, आध्यात्मिक शिक्षा तो स्पिरिट से डील कर रही है, तो इसके लिए पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है। तो जो जहाँ टेम्पल एक ऐसा, ये टेम्पल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप तो है ही है, बट ये एक यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जैसे कि संडे प्रोग्राम हो रहा है, ये एक शिक्षा का माध्यम है। जैसे हमारे टेम्पल में अगर आप देखें तो अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, भक्ति वृक्षा ग्रुप्स हैं, यूथ के लिए अलग अलग क्लासेस होती हैं, गर्ल्स के लिए अलग अलग क्लासेस होती हैं, उसके बाद जो टेम्पल में रेजिडेंट्स हैं उनके लिए पूरा अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तो हो गई क्लासरूम ट्रेनिंग कि क्लास में बैठ के उसके बाद यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, वैदिक प्रणाली बिल्कुल अलग है, वहाँ पे करके सिखाया जाता है। उसके बाद एटलीस्ट जो जितने जैसे मंदिर में रहने वाले जो लोग मंदिर में रहते हैं उनके लिए कंपलसरी है, रोज सुबह आप जाए आप अगर आप मंगल आरती में आए यहाँ अटेंडेंस होता है उनका, 4:30 बजे आपको मंगल आरती पहुँचना ही पहुँचना है, 3 शंख से पहले श्रीमद् भागवतम क्लास में बैठना ही बैठना है, आप यहाँ आएंगे देखेंगे अटेंडेंस रजिस्टर भी पड़ा होता है, कंपलसरी। उसके बाद सेवा के माध्यम से एजुकेशन, आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है किस प्रकार आप परफॉर्म करते हैं, कितने और यही नहीं किस मानसिकता से आप करते हैं। एजुकेशन मतलब क्या, जो अहम भोगी अहम ईश्वर, बाहर की दुनिया में एजुकेशन है आपको सबसे महान बनना है, आपको सबसे ग्रेटेस्ट बनना है। वैदिक प्रणाली क्या है, आपको सबसे महान सेवक बनना है, भोक्ता नहीं बनना, आई वॉन्ट टू बिकम ग्रेटेस्ट सर्वेंट, दैट इज एजुकेशन। और इस एजुकेशन का एग्जाम क्या है, आप कहीं भी ट्रांसमिशन होता है नॉलेज का, कहीं भी आप शिक्षा प्रणाली होती है उसका कोई एग्जाम तो होता है, तो जो वैदिक नॉलेज है इसका एग्जाम कैसे होता है, हाँ कल शाम में हिजुलस नब योगेंद्र महाराज आ रहे थे, तो महाराज भी अपनी क्लास में बता रहे थे कि आपको पता है कि आप सबको एक एग्जाम में बैठना है। आप वैदिक एजुकेशन ले या ना ले ये आपके ऊपर है, बट एग्जाम में तो आपको बैठना ही है। एग्जाम ऑप्शनल नहीं है। बाहर होता है कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया किसी कॉलेज में तो आपको एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, बट स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। ये जो हमें शरीर मिला है इसमें एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, आप नॉलेज ले या ना ले। वो एग्जाम क्या है? माधवी बोल रहे हैं। हाँ, मृत्यु क्या है? एग्जाम, वो एग्जाम क्या? वो तो सबको आती है, उसमें एग्जाम क्या है? उसमें क्या चीज जज की जाएगी? जैसे पासिंग मार्क होते हैं ना 33%, 40%, ग्रेस मार्क्स, तो यहाँ पे क्या है? पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हाउ ब्रेवली, ओके, क्लोज, बट व्हाट्स एग्जैक्ट? देखिए, डेथ तो सबकी आनी है, उसमें कौन पास हुआ कौन फेल हुआ कैसे पता चलेगा? वेट 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 वेट, जिन्होंने अभी आंसर नहीं किया हाथ खड़ा करके बताइए। मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण, ठीक है, यस, प्रवीण ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लास्ट मोमेंट पे शरीर छोड़ते समय आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, ये असेसमेंट क्राइटेरिया है। और जो भी आपका थॉट होगा वैसा आपको एक नेक्स्ट बॉडी दिया जाएगा। किसी का भी थॉट होगा, जैसा भी थॉट होगा, उसी प्रकार का एक अगला शरीर धारण किया जाएगा। ये तो बहुत आसान है, फिर आध्यात्मिक जीवन में फिर तो पास होना बहुत आसान है। एक करना है, एक पिस्टल लेनी है, हरे कृष्णा, तो मैं हरे कृष्णा बोलते हुए मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, क्या लगता है आपको? जब किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था लेक्चर में कैसे करना सर, तो उनको उत्तर मिला था जब आप एक्चुअल में पिस्टल यहाँ रखेंगे ना, और ये दबाने के ट्रिगर दबाते समय जितनी आपकी आसक्तियाँ हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, जो आपने लाइफ में किया, सब यहाँ पर आ जाता है। ऐसे थोड़ी, वो इतना आसान थोड़ी है प्रैक्टिस। और अंत में आपके, अंत समय आपके मन में क्या विचार रहेंगे ये कैसे निर्धारित होगा? जब आप पूरा जीवन आपने किस प्रकार से जिया है, पूरे जीवन में आपने इंद्रियों सेंसेस से क्या चीज अंदर डाला है, वही चीज तो कंटेम्पलेट होगा। हमारा कंटेम्पलेशन का प्रोसेस क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये स्मरणम इज अ थर्ड स्टेप। पहले टू स्टेप्स क्या है? आपने क्या सुना है और आप क्या बोलते हैं, आप कैसे सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में सुनना पसंद करते हैं और कैसे सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में बोलना पसंद करते हैं, वैसे ही आपके थॉट्स होंगे। कि आप किसी की निंदा करने में आपको बहुत आनंद आता है, आप मतलब हम, मैं वैसे सेंस में बता रहा हूं, क्या हम किसी को नीचे खींचने में हमें बड़ा आनंद आता है या किसी की प्रशंसा करके ऊपर उठाने में हमें आनंद आता है? हरिनाम लेते समय, भगवान का नाम लेते समय हमारे मन में कैसा भाव रहता है? या कोई भी सब्जेक्ट मैटर्स हो सकता है। वैदिक सिविलाइजेशन में सारे सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कस किए। आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें एक्शन भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, कोई भी आप सब्जेक्ट मैटर ले लें वो सब उसमें उपलब्ध है। बट डिफरेंस क्या है? उसके जो केंद्र हैं वो भगवान कृष्ण है। हर चीज़ कृष्ण से संबंधित है। आप अगर महाभारत देखेंगे, महाभारत का सबसे मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? कृष्ण। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्ण। इसलिए श्रीमद् भागवतम या जो वैदिक लिटरेचर्स हैं इनको पढ़ने से हम अपना मन वास्तव में भगवान में लगा सकते हैं और तब हम एग्जाम में पास होंगे। अच्छा, आप में से किसी को पता है ये इसका एग्जाम कब आना है? नॉर्मल एग्जाम में, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में तो एक डेट शीट निकलती है ना? आपको पता होता है कि इस दिन आपका एग्जाम है इतने टाइम बाद। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आपको पता है कब कब एग्जाम, कब फाइनल एग्जाम कब आएगा? नहीं ये सरप्राइज टेस्ट होगा, है ना? और जब ये आएगा तब ऐसे नहीं कह सकते नहीं 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 मेरी तैयारी नहीं है, या कोई ऐसे कह सकते हो कि नहीं नहीं मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अगर एग्जामिनर एग्जाम आएगा मैं उसको पराजित कर दूंगा अपनी शक्ति से, ऐसा कोई कह सकते हैं? या कहीं ऐसी बुक पढ़ी आपने 10 Reasons Why I Should Not Die? नहीं। पर आप इस तो अगर आपको आपको पता है कि क्लास में आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, आपका सरप्राइज टेस्ट होगा ये आपको पक्का है, तो एक सिंसियर स्टूडेंट क्या करेगा? हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहेगा, है ना? तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी हम कितना सक्सेसफुल हैं, अब मान लीजिए अगर कोई मैच चल रहा है 6 ओवर में 36 रन चाहिए, है ना? और अभी प्रेजेंट जो रन्स पर ओवर है उसका जो एवरेज चल रहा है कितना चल रहा है? 6 रन्स पर ओवर ही चल रहा है, और 6 ओवर में 36 रन चाहिए, तो पता चल जाएगा ना कि मैच व्यक्ति जीत रहा है कि नहीं? प्रेजेंट में भी पता चल जाएगा ना, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो क्लियर हो जाएगी। या आगे 6 ओवर में 36 रन चाहिए और अभी रन पर ओवर 10 है, हर ओवर में 10 रन की इस एवरेज से अभी तक बढ़ता है, तो पता चल जाएगा ना कि आगे आने संभावना है कि नहीं। बट आपको चाहिए 6 ओवर में 100 रन, अभी एवरेज चल रही है 2 की, है ना? और फिर सोचे कि उस समय एंड मोमेंट में जाके आप पता वही प्रेजेंट में पता लग रहा है क्या हाल है। तो आप डेली लेवल पे भी असेस कर सकते हैं आप कितना टाइम स्पिरिचुअलिटी को डिवोट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डेडिकेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप सब लोग अभी संडे के दिन यहाँ पर प्रोग्राम पे आए, आपने डेडिकेटली टाइम डिवोट किया, ये आपका प्रिपरेशन टाइम है निश्चित रूप से, ये काउंट होगा आपके फाइनल एग्जाम में। आपका चुनाव था कहीं भी जा सकते थे, बट यू स्पेसिफिकली चोज, यू केम टू टेम्पल, एंड इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। इसका बनाए रखिए, एवरी वीक कम, वाई एवरी वीक कम इन द मॉर्निंग ऑल्सो, और भगवान इस टेस्ट में हेल्प करने के लिए हमें बहुत सारी सुविधाएं भी देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या सुविधा देते हैं? जैसे भगवान ने अपने ग्रंथ दिए, इन ग्रंथों को पढ़ के आप नॉलेज ले सकते हैं, भगवान अर्श विग्रह के रूप में आते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान पवित्र नदियों के रूप में है, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा, इतने सारे भारत में इतने सारी पवित्र नदियां हैं, पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, और पवित्र दिन है, जैसे कि कल है एकादशी। तो ऐसे सुविधाओं का हम पूरा लाभ उठाएं। तो इसलिए एजुकेशन कंप्लीट, ये जो टेंपल है दीज आर कंप्लीट स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर आप यहाँ अगर शॉप में भी जाएं, शॉप में कम से कम आपको 500 डिफरेंट टाइटल्स की बुक्स मिल जाएंगी, और अभी उस पर श्रीमद भागवतम चैतन्य चतुर्थ डिस्प्ले में नहीं है। श्रीमद भागवतम एक कैंटो इतना मोटा है, वो सफिशियंट कोर्स मटेरियल है इस पढ़ने के लिए, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो तीसरा है मेडिकेशन, यहाँ पर इलाज भी होता है। किस चीज का इलाज? अभी यहाँ पे एक तो होता है शरीर की बीमारी, उसके लिए एक फिजिकल डॉक्टर है, परंतु हमारे 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किसका बना होता है? मन बुद्धि अहंकार। तो जिस प्रकार से स्थूल शरीर में बीमारियां आती हैं, सूक्ष्म शरीर में भी अलग अलग बीमारियां हैं। कौन कौन सी? कोई नाम आपको किस सटल बॉडी के डिजीज का नाम पता है? सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार, इसकी कोई बीमारी का नाम पता है? जैसे इसका तो है बुखार चढ़ना और अलग अलग टाइफाइड मलेरिया कैंसर सो ऑन, बट सूक्ष्म शरीर की? यस प्रभु जी, ठीक है। और कौन कौन सी बीमारी? हाँ, 6 बीमारियां हैं। यस प्रभु, डिप्रेशन बिल्कुल सही बताया आपने। यस प्रभु, हाँ जी, नकारात्मक विचार आना, तो जितने भी आप बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज काम। काम मीन्स लस्ट। लस्ट मतलब सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन ही नहीं, एनीथिंग। मैं पूरी सृष्टि को कैसे देखता हूँ कि ये मेरी इंजॉयमेंट के लिए है। मैं इस सृष्टि के सेंटर पे हूँ और पूरा का पूरा वर्ल्ड कैसे रोटेट कर रहा है मेरे मुझे सेंटर में रखते हुए, बट ऐसा नहीं है। यस यस, दैट्स काम। दूसरा है क्रोध, एंगर, बात बात पे गुस्सा आ जाना। अगर मेरे को जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तुरंत गुस्सा आ जाना। या मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, पूरा गुस्सा आ जाना। या कोई दूसरा व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं चला, बिल्कुल क्रोध आना। फिर है काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब ग्रीड। कहा जाता है एक जो गुस्सैल व्यक्ति है वो गुस्सा करके शांत हो सकता है। कामुक व्यक्ति है, उसको कोई चीज दे दो थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट वो शांत हो जाएगा। परंतु एक लोभी व्यक्ति, उसको संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है शास्त्रों में, आपको पता है अमीर व्यक्ति किसको बताया गया? हु इज अ रिच पर्सन इन दिस वर्ल्ड? जिसके पास एक चीज है, क्या? अ रिच पर्सन इज वन हु इज सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट है। नहीं तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, अरबपति हो, बट अगर संतुष्ट नहीं है तो आप खुश रह ही नहीं सकते। और कोई तथाकथित बहुत गरीब व्यक्ति है जो मुश्किल से 10-15 हज़ार रेट से कमा रहा है, 5-6 हज़ार कमा रहा है, बट वो संतुष्ट है, वो अरबपति से ज्यादा रिच है एज पर शास्त्र। सेटिस्फैक्शन। और वामन देव, अभी सुबह हमारे श्रीमद भागवतम में वामन देव और बलि महाराज का प्रसंग चल रहा है। वामन देव ने बलि महाराज से कितने पग भूमि मांगी? 3। बलि महाराज पूरी सृष्टि के राजा थे, छोटे मोटे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंसी, यू नो, इंडिया, वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड, भूगोल, स्वर्ग, सब लोगों के वो किंग थे। उन्होंने कहा मेरे पास जो भी दान मांगने आता है उसको जीवन में दोबारा दान मांगने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरे पास आए छोटे से वामन रूप में थे, 3 पग जमीन मांग रहे हो, तुम बुद्धिमान नहीं लगते, तुम और भी मांग सकते हो। तो वामन देव ने कहा एक ऐसा व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं है उसको आप पूरे ब्रह्मांड का राज्य भी दे दोगे तब भी उसकी और पाने की इच्छा होगी। क्या मेरे को गारंटी दे सकते हो कि मैं आपसे एक राज्य मांगू उसके बाद मेरी इच्छा ना और आगे मांगने की? तो उसने कहा सेटिस्फैक्शन। तो काम, क्रोध, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मतलब अटैचमेंट, इल्यूजन। मोह, मद, मत्सर्य। मत्सर्य मतलब द्वेष। सामने वाला है ना, मेरे पड़ोसी की गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे है ना, इस पे मेरे पड़ोसी से तो दूर की बात है। आजकल तो घर में भाई भाई के बीच में द्वेष हो जाता है कि मेरा भाई सक्सेसफुल कैसे, मैं पीछे रह गया, उसके पास ज़्यादा, उसकी तनख्वाह ज़्यादा कैसे, वो मेरे से दिखने में अच्छा कैसे है, वो मेरे से ज़्यादा, उसके नंबर कैसे आ गए, ज़्यादा कैसे बने। लोग इतने इस विचार से इतने परेशान होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, दूसरे व्यक्ति को मार देते हैं। इतनी खतरनाक चीज़ है द्वेष करना। और आखिरी है मद। मद मतलब कंप्लीट मैडनेस, इंटॉक्सिकेटेड। ये सूक्ष्म, आप कहीं भी बाईपास सर्जरी करा लीजिए, बट ये जो हृदय के रोग है, सूक्ष्म शरीर के रोग हैं, तो वो ठीक हो जाएगा क्या बाईपास सर्जरी से? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या इलाज है? तो उसके लिए मंदिर। तो मंदिर, स्कूल्स भी हैं, एजुकेशन सिस्टम भी है, एक ऐसा स्थान भी है जहाँ आपको शांति मिलती है, एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पे आपका इलाज होता है, ये हॉस्पिटल्स भी हैं। और यहाँ पर सबको, सबकी दवाई एक ही दी जाती है सब। और ये दवाई हम नहीं दे रहे, ये दवाई कौन लेके आया था? श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, तुम्हारा लोहिते आमी ओइनो अवतारा। नेक्स्ट लाइन कि महाप्रभु कह रहे हैं कि कि इस संसार में तुम्हारे अलावा मेरा मेरे अलावा तुम्हारा कौन मित्र है, और इसलिए और वो मैं सबके लिए एक औषधि लेके आया हूँ। वो क्या औषधि है? हरि नाम, भगवान के पवित्र नामों का जप करना। भगवान के पवित्र नामों का जप करने से ये मन के जितने रोग हैं ये दूर हो जाते हैं। और जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसके लिए एक होता है दवाई और दूसरा होता है क्या उसकी डाइट है, है ना, डाइट पे भी कंट्रोल किया जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये तो दवाई हो गई हरे कृष्ण महामंत्र, डाइट क्या है? भगवान का प्रसाद खाना और कोई, ये 50% ठीक है, 50% और है इसमें। नहीं, डाइट है सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रसाद ही लेना, अन्यथा कुछ नहीं लेना। मेरे जीवा पे इस गले से नीचे कुछ भी उतरेगा वो पहले भगवान को अर्पित होगा। भगवान को जब तक अर्पित नहीं है मैं मेरे इस जीवा से नीचे नहीं उतरेगा, ये परहेज है पूरा। तब आप देखिए आपका ये जो जितने रोग हैं काम क्रोध लोभ मोह कितनी जल्दी खत्म होते हैं, अगर आप भगवान का पवित्र नाम ले रहे हैं और सिर्फ प्रसाद ले रहे हैं। अगर आपका जीवन इतना जल्दी, आप देखेंगे आपके विचारों में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, आप डिसीजन लेने के लिए इतने क्लियर होंगे अपनी लाइफ के अंदर, आपका फोकस कंसंट्रेशन इतना बढ़ेगा, आपका अस्तित्व इतना शुद्ध होगा, और आप आंतरिक रूप से संतुष्ट होंगे, पीसफुल होंगे, तब आप जीवन के उच्चतम जो पर्पस है उसके बारे में आप विचार कर पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं जब हम भगवान का दिया हुआ प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने से उसमें ऐसी शक्ति होती है, ब्रेन के अंदर फाइनेट टिश्यूज क्रिएट होते हैं, जिससे आप, अब जैसे ये बोलना तो बहुत आसान है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, बट बोलने से क्या समझ आ जाता है? नहीं, वो जो सूक्ष्म विज्ञान है इसको समझने के लिए बुद्धि बहुत तीव्र चाहिए, और वो तीव्र बुद्धि बनती है भगवान को दिए गए अर्पण किए हुए प्रसाद लेने से। और जितना हम भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं उतनी फिर दूषीकरण भी होता है। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, जो मेरे को अर्पित किए बिना खाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। और पाप और हमारे जीवन में जितने भी क्लेश हैं उसका जो रूट कॉज है वो क्या है? पाप है। अगर किसी की लाइफ में कोई मिजरी आती है, जनरली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा इट्स बिकॉज ऑफ सिन। और कोई व्यक्ति कितना सिन फ्री लाइफ होगा? इसलिए धर्म के चार स्तंभ बताए गए हैं, पहला है क्लीनलीनेस शौचम, दूसरा है तपस्या, तीसरा है सत्यता शौचम तपस्या और करुणा कंपैशन। इसलिए बताया गया है चार नियम। इस्कॉन में किसी को भी दीक्षा लेने दिया उसको पहले इस्कॉन मेंबर मतलब ये एटलीस्ट फोर रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा है। पहला क्या है? नो मीट ईटिंग। मीट ईटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स अनियन गार्लिक एंड सो ऑन। नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब इंटॉक्सिकेशन में चाय कॉफी भी आ जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपके यहाँ के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, चाय कॉफी में क्या इतना समस्या है भाई, कोई चीज़ तो हमारे लिए छोड़ देनी चाहिए। चाय में ऐसा क्या है? चाय बिना चाय पी के तो मेरी कंसंट्रेशन बढ़ती है। मैं पढ़ता हूँ, हमें याद है जब कॉलेज में होते थे हॉस्टल में नाइट आउट करना होता था एग्जाम से पहले, तो बस वो कॉफ़ी तो सबका मेन होता था। रात में तो कैंटीन की सबसे ज़्यादा कमाई होती थी, चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल होता। बट शास्त्रों के अनुसार इसमें एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपको एडिक्ट, उसके प्रति आप एडिक्ट हो जाते हैं। तो एडिक्शन इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है, व्यक्ति जीवन में तपस्या नहीं कर पाता, उसका एडिक्शन है ना, तो वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता फिर, तो इसलिए मना कर, वो तमोगुण में होता है। इसलिए चाय कॉफ़ी नो इंटॉक्सिकेशन। तीसरा क्या है? फॉर क्लीनलीनेस नो इलिसिट सेक्स, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज। दिल्ली और मॉडर्न, हमें लगता है कि दिल्ली अमेरिका बॉम्बे ये सब मॉडर्न है, और हमारी मॉडर्न की डेफिनेशन है फ्री मिक्सिंग, बट शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। शास्त्र ऑलवेज सेज लेडीज का बताया गया सबसे बड़ा ऑर्नामेंट आभूषण क्या है? देयर एक स्पेसिफिक वर्ड है श्रीमद् भागवतम, दिस इज श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में लिखा गया, लेडीज आर मोर पावरफुल देन मेन, जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो पुरुषों को कंट्रोल कर सकती हैं। कैसे? शाइनेस के माध्यम से। जो एक लेडी औरों का रिस्पेक्ट कमांड करती है वो कितनी शाय है, कितनी लज्जा है। और उसी प्रकार से जो पुरुष है, पुरुष का सबके सम्मान का, सबके रिस्पेक्ट का एक दायरा है। वैदिक संस्कृति में एक ट्रू जेंटलमैन किस प्रकार से बिहेव करता है? शिला प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया कि कैसे हम आपके शिष्यों को पहचान पाएंगे। शिला प्रभुपाद ने कहा, माई फॉलोअर्स विल बी ट्रू जेंटलमैन। तो उसमें इसलिए बताया कि क्लीनलीनेस मीन्स नो इलिसिट कनेक्शन। देयर इज अ प्रॉपर एटिकेट कि कैसे पुरुष को स्त्री से व्यवहार करना, स्त्रियों को पुरुष से व्यवहार करना। और इसलिए बचपन से ही ब्रह्मचार्य की ट्रेनिंग दी जाती थी। आपको पता है ब्रह्मचार्य आश्रम में, जैसे हम एजुकेशन का डिस्कस कर रहे हैं, जब 5 से 25 वर्ष तक होता था उसमें 4 चीज़ें बताई जाती थी कि कैसे बच्चा सेंस कंट्रोल करे, तपस्या, दूसरा क्लीनलीनेस, कैसे साफ सफाई रखे आंतरिक और बाह्य रूप से, तीसरा कैसे सम्मान दे, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, और चौथा उसके अंदर संवेदनशीलता उत्पन्न होती थी जब वो गुरु के साथ रहता था, गुरुकुल में कितना सेंसिटिव होना। तब वो गृहस्थ आश्रम में जाता था तो उसका जो मैरिज है बहुत सक्सेसफुल मानी जाती थी। क्यों आपको लगता है कि कोई स्त्री एक ऐसे पुरुष का सम्मान करेगी जिसके इंद्रियों पे संयम ना हो, जिसको साफ सफाई रखना ना आता हो, जिसको सम्मान देना ना आता हो, रिस्पेक्ट ना, और कोई सेंसिटिव ना हो? अगर कोई पार्टनर इन 4 क्वालिटीज नहीं है उसमें, क्या रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस फाउंडेशन होता था, तो दैट इज मेडिकेशन, इस सूक्ष्म शरीर का करना। एंड पी स्टैंड्स फॉर प्यूरिफिकेशन, तपो दिव्यम पुत्र कहन ये न सत्वम, हम अपना अस्तित्व कैसे शुद्ध करें। अगर प्यूरिफिकेशन मतलब आप जिस भी लेवल पे हैं उससे आप बेटर बन सकते हैं। तो टेंपल का एक और पर्पस ऐसा है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब तक हम बच्चे होते हैं ना, बच्चे में सीखने की टेंडेंसी बहुत अधिक होती है, बहुत जल्दी कैच करते हैं। बट जैसे ही हम स्कूल सिस्टम से बाहर आते हैं या फिर हम एक ऐसा रोल ले लेते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स का, टीचर्स का, इंस्ट्रक्टर्स का, एक लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, तो कई बार लगता है कि हमारा लर्निंग स्पिरिट खत्म हो जाता है और हम दूसरों को सिखाने में लग रहे थे। बट अपने आप पे कार्य करना भी बहुत आवश्यक है। कब तक आवश्यक है, कि कौन सी एज तक आवश्यक है कि अपने सेल्फ पे भी वर्क करते रहे? क्या लगता है आपको, 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक, या शादी तक, रिटायरमेंट तक, कब तक अपने में वर्क कब तक करना है? हाँ, यस माता माता जानते, फुल लाइफ। क्यों? क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम तो डेथ के समय ही है। ज्यादा आपका एग्जाम तक आप नहीं गए तब तक आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, सेल्फ ग्रोथ, उसके लिए टेंपल है, प्यूरिफिकेशन। देन नेक्स्ट इज एल स्टैंड्स फॉर लव। बताया गया हर एक की डिजायर से दो ही हैं, हम किसी को पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहते हैं एंड वी वॉन्ट टू बी लव्ड बाय समवन, किसी से पूर्ण रूप से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो टेंपल है ये से अर्ष विग्रह सिर्फ ऐसे ही नहीं खड़े, ही इज अ कृष्णा, राधा एंड कृष्णा दे आर लिविंग पर्सनैलिटीज, वो जीवित व्यक्ति हैं, उनसे आप रेसिप्रिकेशन अनुभव कर सकते हैं अपने शरीर में, अपने जीवन में। हर क्षण भगवान राधा और कृष्णा आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। पूरी प्रकृति में आप मिराकल्स ही मिराकल्स देख सकते हैं, बट आपकी आईज थोड़ी सी ट्रेन होनी चाहिए। आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, ये बैठना क्या चमत्कार नहीं है? आप कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं, रॉबोट बना सकते हैं कि जो बैठ सके, खड़ा हो सके? अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, मेरा क्योंकि सब्जेक्ट था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट था रोबोटिक्स, एक सिंपल एक ऐसी मशीन क्रिएट करना, मान लो सिर्फ ग्लास उठाना है और रखना है, सिर्फ अगर मेरे को ऐसा रोबोट ही क्रिएट करना होगा, हजारों लाइन का कोड लिखना पड़ेगा मेरे को सिर्फ इसके लिए, हजारों हजारों लाइन का कोड। और अभी हम देख पा रहे हैं, आप सोचो एक कैमरा की कॉस्ट कितनी होती होगी, DSLR 30,000 से स्टार्ट होता होगा। और अगर जैसा हमारा आईज में मैकेनिज्म है, ये साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि आईज दे आर द परफेक्ट कैमरा, कैसे जब लाइट होती है अंदर का लेंस अपने आप श्रिंक हो जाता है, कैसे लाइट कम होती है लेंस बड़ा हो जाता है, ये भगवान ने प्रोटेक्शन लिड्स दिए हुए हैं, कैसे हम स्मेल कर रहे हैं, हम आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये लैंग्वेज क्या मिरेकल नहीं है? मैं कुछ शब्द ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं और उससे कुछ समझ रहे हैं, कैसे हो पा रहा है? आपके बॉडी के अंदर ये बाल कैसे उग रहे हैं? कैसे आप देखें, जहाँ पर हर एज ग्रुप का है, हम अलग अलग, हम पहले कभी छोटे थे, बड़े हुए हमारा साइज बड़ा हो रहा है, कैसे? चमत्कार नहीं है क्या? सो भगवान का रेसिप्रिकेशन हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिक प्रोसेस को अपनाएंगे तो ये रेसिप्रिकेशन तो आप और इंटीमेटली अनुभव कर सकते हैं। दैट इज लव। एंड फाइनली ई स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट। आप देखिए जैसे टेंपल है, एक टेंपल में ही कितने सारे अलग अलग प्रकार के सर्विसेज हैं। यहाँ पे कुछ डिवोटीज हैं जो अभी प्रसादम सर्व कर रहे हैं। प्रसादम सर्व कर रहे हैं तो मतलब प्रसादम किसी ने कुक किया होगा, प्रसादम कुक किया होगा मतलब कोई सब्जियां खरीद के लाया होगा, किसी ने काटी होंगी, किसी ने भोग लगाया होगा, किसी ने ऊपर से किचन से नीचे उतारे होंगे, कोई आप जब प्रोग्राम के बाद चले जाएंगे कोई यहाँ पे सफाई भी करेगा, सफाई करने का, और 24 घंटे यहाँ एक ही कार्य है भगवान की किस प्रकार से सेवा करना है। यहाँ पे दिन कब शुरू हो जाता है? पहली आरती होती है, भगवान को उठाया कब जाता है? सुबह 4 बजे, 4:30 तो मंगल आरती होती है, उससे पहले भगवान को उठाया जाता है, भगवान को भोग लगता है। अगर किसी ने भगवान को 4 बजे उठाना है तो पुजारी को कितने बजे उठना पड़ेगा? कम से कम 3 बजे तो उठना पड़ेगा उसको, है ना, 3:30 तक नहीं, भगवान को 4 बजे जो प्रोसेस है वो तो 4:45 शुरू हो जाता है, 4:45 ऑल्टर खुलता है अंदर जो पुजारी पीछे से। अगर 4:45 ऑल्टर खोलना है, और टाइम डीटी वर्शिप में बहुत लिमिटेड होता है, अब 4:45 ऑल्टर खोलना है, उससे पहले आके भगवान भोग की प्लेट भी रेडी करनी होगी, तो कम से कम उसको 3:45 तो उठना पड़ेगा, है ना। और कोई कह सकते हैं ठीक है 12:00 से 3 क्या होता है, 12:00 से 3 पूरे दिन सिक्योरिटी के लिए किसी को ना किसी को खड़ा रहना होता है, नहीं खड़ा रहना होता, 24 आवर देर इज वन थिंग सर्विस। और यहाँ पर हर एक के लिए कोई स्थान है, ऐसा नहीं है कि जनरली, एक साइकोलॉजिस्ट बता रहे थे इंडियन मेंटेलिटी पता है कहाँ से पनपती है, उसका बेस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मोर मैन, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लोग ज़्यादा हैं। बट आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड सर्विसेज एंड अनलिमिटेड पर्सन, तो कोई कॉम्पिटिशन, हर एक के लिए जगह है। आप कुछ ना कुछ सेवा जब भी मंदिर आए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सर्व करें, अगर आप प्रैक्टिकल सर्व नहीं कर सकते भगवान के लिए आए कुछ ना कुछ लेके आए, फूल लेके आए, माला लेके आए, भगवान के लिए भोग लेके आए, इससे भगवान के साथ संबंध बनता है। कभी प्रसाद वितरण करें, कभी क्लीनिंग करें, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएँ, आप निश्चित अपने वॉलंटियर्स से इंक्वायर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप से किस प्रकार से सेवा करें। तो एक ऐसा स्थान जो एक मॉडर्न हॉस्पिटल की तरह भी एक्ट कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरह भी एक्ट कर रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर की तरह भी एक्ट कर रहा है, एक लीडरशिप बनाने की तरीके से भी एक्ट कर रहा है, एक प्लेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको पीस मिलता है, तो क्या वहाँ पर हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? और अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा मंदिर में, जैसी मंदिर की बात आती है तब गरीबों का ध्यान आता है ना, बट कभी IPL चल रहा हो जहाँ एक एक मैच में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ कभी गरीबों की बात नहीं आएगी। कभी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हो, जहाँ पे सिर्फ करोड़ों रुपए कौन ज्यादा सुंदर दिखता है, जो हम है ही नहीं, अपने आप को शरीर समझे हैं, करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च करते हैं, तब कभी गरीबों की बात याद नहीं आती है ना। खुद की शादी पे जब करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब आपको कहे आप अपना शादी का बजट 50% कर दीजिए, 50% हम गरीबों की सेवा में लगाएंगे, तब कभी बात नहीं आती। परंतु तो कहीं भी मंदिर निर्माण तो अचानक से गरीब सामने दिखने लग जाते हैं भाई क्या। और ऐसा नहीं है, गरीब होना निश्चित रूप से हमें सिंपैथी रखता है, और सिर्फ मंदिर के माध्यम से ही गरीबी हटाई जा सकती है। व्यक्ति गरीब क्यों होता है? गरीब व्यक्ति धन से नहीं होता, जैसा हमने बताया सेटिस्फेक्शन है, गरीब व्यक्ति भी अगर सेटिस्फाई है वो रिच हो सकता है। और आध्यात्मिक वातावरण जब होता है तो एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है, जिसमें इतने अमीर लोग हैं, अगर वो किसी को चैरिटी दें तो पूरी गरीबी कहने को हट सकती है। परंतु वो चैरिटी कब देंगे? जब उनके अंदर करुणा का भाव होगा, कंपैशन का। वो बिना स्पिरिचुअल कल्चर के नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई टेंपल्स आर एब्सोल्युटली मस्ट, और बड़े बड़े मंदिर निर्माण करने चाहिए जहाँ पर ये सारी सुविधा हो। परंतु जो मंदिर में रह रहे हैं उनको हमें क्लासेस में सिद्धांत सिखाया जाता है, ऑल ऑपुलेंस इज फॉर लॉर्ड एंड पॉवर्टी फॉर वनसेल्फ, कि व्यक्तिगत जीवन में जितने भी लोग मंदिर में रह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि मंदिर में पैसा आ रहा है तो मंदिर में रहने वाले पूरे ऐश कर रहे हैं, नहीं। जो मंदिर में रह रहे हैं व्यक्तिगत, अगर आप उनका जीवन देखेंगे बहुत सरल, परंतु जहाँ पे भगवान की सेवा करनी है वहाँ पे सारा ऐश्वर्य किसके लिए है? भगवान के लिए है। भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, भक्तों की सेवा में होना चाहिए। खुद सादा जीवन और उच्च विचार, ठीक है। तो हम यहीं पर विराम देंगे। तो टेम्पल, टी स्टैंड्स फॉर ई एजुकेशन, एम मेडिकेशन, पी प्यूरिफिकेशन, एल लव एंड ई एंगेजमेंट, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? यस माधुरी, एनी क्वेश्चन या कुछ कोई कमेंट करना चाहें? ऑल क्लियर या लेट हो गए? प्रसाद दिख रहा है प्रोजेक्ट, लाइन ना लग जाए बस, है ना। ओके, थैंक यू। आप सब इतने धैर्यपूर्वक आप बैठे रहे, यू आर वेरी वेरी नाइस ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। एंड टुमारो, कल निर्जला एकादशी है, कल की एकादशी ऐसी एकादशी है, अगर आप ये भगवान ने स्पेशली भीम के लिए क्रिएट की थी, 5 पांडव थे, उसमें भीम का बताया गया है, व्रकोदर उसका एक नाम है, व्रकोदर, उसके जो पेट की अग्नि हमेशा जलती रहती थी, कोई भी भोजन आता था उसका बंटवारा होता था, 50% भीम लेता था और बाकी 50% 4 पांडव, कुंती और द्रौपदी में शेयर होता था। तो भगवान वो कहते थे मेरे से एकादशी नहीं रखी जाती, और उनको डर था कि मैं एकादशी नहीं रखता तो मेरे को उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो व्यास देव जी ने उनको ये ऑप्शन बताया कि अगर आप ये पांडव निजला एकादशी, अगर आप ये एकादशी पूरा उपवास रखते हैं कि जल का एक बूंद भी नहीं लेते, तो आपको साल में जितनी एकादशी हैं उन सबका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कल वो दिन है, और अगर कोई व्यक्ति कल पूरा उपवास रखता है, पानी का एक बूंद भी नहीं लेता, सुनने में बड़ा तपस्या लगता है बट ये पॉसिबल है। भक्तों के संग में अगर आप आते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, यहाँ पे नाइट आउट प्रोग्राम भी है महाराज अग्रसेन भवन में, यूथ के लिए न्यू बिल्डिंग में, यहाँ पे भी 24 आवर कीर्तन रहेगा। तो अगर आप में से कोई रखना चाहें, आप सब सादर आमंत्रित हैं, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे एक 100 किलो का बक्सा हो, बट आपको पता हो कि 100 किलो में सारा सोना भरा हुआ है, तो आप 100 किलो घर ले जाने बड़ी समस्या होगी ना, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बट आप करोगे नहीं करोगे? कुछ भी करोगे, क्रेन बुलाओगे, अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दोगे, चाहे कमर दर्द हो उठाने में, बट लेके जाओगे। क्यों? आपको उसकी कीमत पता है, उसके अंदर मेरे को सोना मिलेगा। उसी प्रकार से अगर ये एकादशी इसका ऐसा फल है, ये आपका असली आध्यात्मिक एसेट है। जितना आप जीवन में कुछ भी कर लो भौतिक रूप से, अगले जीवन में स्टार्टिंग से ही होगा, कोई ऐसा हो सकता है कि मैंने इस साल मैंने 12th पास की थी, अगले जीवन में मैं ग्रेजुएशन से स्टार्ट करूँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। बट इस समय आपने आध्यात्मिकता के लिए जितना एंडेवर किया है वो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर में जाता है, वो आपकी लाइफ परमानेंट हो गया, डेथ के बाद भी आपके साथ रहेगा। मान लो आपको अगला शरीर लेना भी पड़ता है, वो आपके क्रेडिट में रहेगा, वो उसका कभी विनाश नहीं होता। तो जो शाश्वत है, आइए क्यों ना उसके लिए हम कुछ एंडेवर करें, थोड़ी सी तपस्या, तपस्या के बिना तो कुछ मिलता नहीं। क्योंकि हम, आप किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? भगवान कृष्ण को। अगर आपको बोला जाए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से आपकी अपॉइंटमेंट है, एक नॉर्मल कंपनी में एडमिशन लेने के लिए व्यक्ति 17 साल पढ़ता है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करता है, घर अलग अलग कंपनीज में जाके ठोकर खाता है, इतनी बेइज्जती सहन करता है, इतना कुछ, इतना प्रयास करता है कि नहीं? एक कॉलेज में एडमिशन लेना हो, हमें याद है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो, 2 साल के लिए शादी में जाना छोड़ देता है, टीवी बंद कर देता है, कुछ ना कुछ करता है कि उसको वैल्यू पता है। और यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य MNC में एडमिशन लेना नहीं है, MUC में, मल्टी यूनिवर्सल कॉरपोरेशन में, मल्टीनेशनल नहीं, या मल्टीनेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टी यूनिवर्सल कॉरपोरेशन, उसकी कंपनी में अगर एडमिशन लेना है तो थोड़ा बहुत तो कीमत देनी पड़ेगी ना, और वो कीमत भी बहुत सरल हो जाती है, बहुत लाभदायक हो जाती है अगर हम भक्तों के संग में करें। तो कल निर्जला एकादशी है, आप ट्राई कर सकते हैं, हम आपको इंकरेज करेंगे, ट्राई डूइंग इट पॉसिबल। और हम जीवन में कठिनाई से घबराइए मत। आजकल बच्चों को लगता है कि, और हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि कुछ किसी भी चीज़ पे थोड़ा स्ट्रगल है उससे डर जाते हैं। नहीं, अपने घर में बड़ा बड़ा लिख लीजिए, वी कैन डू डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ। डिफिकल्ट थिंग्स से घबराना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी उठने से घबराना नहीं चाहिए, कोई थोड़ी बहुत तपस्या करनी पड़े सहन कर लो, वैसे ही इतनी तपस्या होती है, भगवान के लिए क्यों ना करें, है कि नहीं? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेमांजन शोरिता चक्षु विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो प्रभु जी ने कितने मधुर तरीके से बताया कि हम टेंपल में आके किस प्रकार से हमारे जो शत्रु है, नित्य शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनसे छुटकारा पा सकते हैं और भगवान के प्रति ये लौल्यम जो प्रेम है वो विकसित कर सकते हैं। उसका विशेष धन्यवाद करेंगे हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे